मेरे बहुत बहुत प्यारे दोस्तों नमस्कार। 9 जून 2015 के इस afeis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों, जैसा कि पिछले कुछ दिनों से आप सुन रहे हैं, मैं आपका ये स्वागत कर रहा हूं अमेरिका से। मित्रों, इसी क्रम में मैं स्वागत करता हूं अपने उन 19 नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की 25 अक्टूबर से जो 15 दिन की क्लासेस होने वाली हैं उनके लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन यंग फ्रेंड्स के नाम हैं पिमल फाल्दू जो राजकोट गुजरात से हैं, रचना बिंदल आप आगरा से हैं, सुरेश यादव दिल्ली से, पंकज यादव इंदौर से, और इंदौर से ही है अमित जोशी, चंदन कपूर आप सिवान बिहार से हैं, अनिल कुमार रवि गोपालगंज ऑब्लिक दिल्ली लिखा हुआ है, यानी कि शायद वो गोपालगंज के रहने वाले होंगे और अभी दिल्ली में रह रहे होंगे, सुरेश कुमार काशीपुर उत्तराखंड से, सुमन कुमार सौरभ नवादा बिहार से, मुनेंद्र पाल सिंह गाजियाबाद से, ब्रह्मानंद दुबे रीवा मध्य प्रदेश से, अभिषेक मौर्य बिशान सीता पूर उत्तर प्रदेश से, रितेश कुमार शाक्य ग्वालियर से, श्याम सुंदर नयन गंगानगर राजस्थान से, प्रवेश कुमार यादव अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश से, नवनीत सिंह फैजाबाद से, गौरव साहू झांसी से, कन्हैया कुमार कोडरमा झारखंड से और पूजा चतुर्वेदी भोपाल से। तो पिमल, रचना, सुरेश, पंकज, अमित, चंदन, अनिल, सुरेश, सुमन, मुनेंद्र, ब्रह्मानंद, अभिषेक, रितेश, श्याम सुंदर, प्रवेश, नवनीत, गौरव, कन्हैया और पूजा, आप सभी 19 साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों, स्वागत करने के साथ ही साथ आप लोगों से मैं ये अपेक्षा भी करूंगा कि आप सभी अब से बिल्कुल प्रतिज्ञा करके पूरे कमिटमेंट के साथ कम से कम डेली ऑडियो गाइडेंस तो निश्चित रूप से सुनेंगे। हालांकि कम से कम शब्द मैंने जो इस्तेमाल किया है वो मैं समझता हूं कि शायद थोड़ा ज्यादा नम्र शब्द है। आपको AIR न्यूज भी सुनना है और साथ ही साथ डेली ऑडियो गाइडेंस भी, ताकि इससे पहले कि आप सब क्लासेस के लिए आए आपकी जो मानसिक पृष्ठभूमि है वो बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो सके, एक ऐसी न्यू आपकी बन चुकी हो कि यहां 15 दिन की क्लासेस में आप सब एक बहुत मजबूत दीवार, मजबूत इमारत बनाने की प्रक्रिया से परिचित होकर यहां से जा सकें। तो मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से मैं हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इसी क्रम में एक छोटी सी घोषणा है। घोषणा यह है कि विनेश कुमार का मेल हमारे पास आया है और उन्होंने भी अक्टूबर की जो क्लासेस होने वाली हैं उसके लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इन्होंने अपना मोबाइल नंबर दिया है और चाहा है कि उनका मोबाइल नंबर सभी उन स्टूडेंट्स को बता दिया जाए जो सीतापुर और लखनऊ से आ रहे हैं, वे चाहें तो विनेश से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो विनेश का मोबाइल नंबर है फ्रेंड्स 7565817524। तो जो भी स्टूडेंट सीतापुर या लखनऊ से आ रहे हों, यदि वे चाहते हैं तो इस मोबाइल नंबर पर विनेश से कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आता हूं अपने नेक्स्ट स्टेज पर जो मोटिवेशन का स्टेज है। आज एक बहुत अच्छी बात मुझे देखने को मिली और मुझे लगा कि मुझे ये बात आप लोगों तक पहुंचानी चाहिए। हुआ ये फ्रेंड्स कि जब हम लोग घूमने गए हुए थे तो समुद्र के किनारे, अटलांटिक महासागर के किनारे जब हम लोग लगभग पहुंचे ही थे तो मैंने देखा कि वहां एक बास्केटबॉल का बड़ा खूबसूरत कोर्ट था। अमेरिका की ज्यादातर बनाई हुई चीजें खूबसूरत ही होती हैं क्योंकि मेंटेनेंस बहुत अच्छा होता है, बहुत ही खूबसूरत, साफ सुथरा, और उस पर उकेरी गई लकीरें और गोलाई वाला बहुत खूबसूरत कोर्ट था। तो मैं तो देख कोर्ट को रहा था, बास्केटबॉल के कोर्ट को, लेकिन देखने को एक बहुत ही खूबसूरत और बड़ी प्रभावशाली और मैं समझता हूं कि बहुत ही मोटिवेशनल घटना मुझे मिली, और खासकर आप सबके लिए, तो विशेषकर जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं। एक लड़का था जिसकी उम्र मैं समझता हूं कि 11-12 साल से अधिक की नहीं होगी। वो बॉल अपने हाथ में लेकर के, और बास्केट बॉल के ऊपर आपने देखा होगा जो टोकरी सी बनी रहती है, एक जाली वाली टोकरी होती है, उसमें बॉल बार बार डालने की कोशिश कर रहा था, जिसे हम अगर अपने देशी भाषा में कहें तो कह सकते हैं कि आप गोल मारने की कोशिश कर रहा था। लगभग 10-12 मिनट तक वो लगातार बॉल डालने की कोशिश करता रहा, और मैं समझता हूं कि 10-12 मिनट में कम से कम उसने 20 बार तो ट्राई किया ही होगा, और एक बार भी उसकी बॉल उस बास्केट में नहीं गई। उसके पास में ही एक और व्यक्ति खड़े थे जो समझता हूं कि शायद उम्र में 45-50 साल के होंगे, मुझे नहीं मालूम कि वो उनके कोच थे या उनके फादर थे या वो भी मेरी तरह ही कोई ऐसे ही टूरिस्ट थे, वो भी उस बच्चे को देख रहे थे। और इसके बाद फिर वे उस लड़के के पास गए और उन्होंने उस लड़के को गाइड किया। मैं वो जो गाइड कर रहे थे उसको बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहा था, वो उन्होंने वहां से गाइड शुरू करना बताना शुरू किया कि किस तरह से तुम बॉल को अपनी दोनों हथेलियों के बीच में रखोगे, कलाई की क्या पोजीशन होगी, और किस तरह से फिर अपने दोनों हाथ उठा करके और बॉल को फिर बास्केट की तरफ उछालोगे। मुझे लगता है कि शायद 2-3 मिनट तक तो बहुत इत्मीनान के साथ उन्होंने बच्चे को गाइड किया, और वो बच्चा भी बड़े ध्यान से उनकी बातों को सुन रहा था। इसके बाद उन्होंने बॉल उठा करके उस बच्चे के हथेलियों पर रख दी, उसकी कलाइयों की पोजीशन को ठीक किया, पैरों की पोजीशन भी ठीक की। इसके बाद कलाइयों को एक पर्टिकुलर ऊंचाई तक उठाने के बाद उन्होंने कहा कि अब तुम बॉल उछालो। बच्चे ने बॉल उछाली और आश्चर्य की बात यह कि बॉल बिल्कुल उस बास्केट में जाकर के गिरी, और डेफिनेटली ये खुशी मनाने का मौका था, और बच्चा तालियां बजा बजा कर उछलने लगा, यानी कि उसे सफलता मिल गई थी। मित्रों, वो बच्चा जो लगभग 10-12 मिनट से लगातार कोशिश कर रहा था, और 20 बार कोशिश करने के बावजूद जो बॉल को उस बास्केट में नहीं डाल पा रहा था, एक सही तरीका जानने के बाद पहली बार ही उसने वो बॉल बास्केट में डाल दी। इसके बाद उसने जब दोबारा बॉल उछाली उस बास्केट की तरफ, तो वो बॉल बास्केट में नहीं गई, लेकिन पहले की तुलना में उसका निशाना बेहतर था, यानी कि बॉल बास्केट के आसपास ही रही और कोने से टकराकर नीचे आ गई। उसने फिर ट्राई किया और सच पूछे तो उसे दोबारा भी सफलता नहीं मिली, बॉल का वही हश्र हुआ, बॉल बास्केट के कोने से टकराई और टकराने के बाद एक दूसरे से टकराकर नीचे गिर गई। लेकिन जब उसने तीसरी बार फिर से बॉल उछाली तो फिर से वो बॉल बास्केट के अंदर थी। इसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, हम लोग वहां से चले गए। लेकिन मित्रों, ये घटना सच पूछिए तो इस घटना ने मेरे अंदर इस विश्वास को सुदृढ़ किया कि केवल मेहनत से ही बात नहीं बनती है, कि हम मेहनत करें मेहनत करें मेहनत करें, बार बार ट्राई करें और हम उसमें पारंगत हो जाएं, प्रवीण हो जाएं, उसमें एक्सपर्ट हो जाएं। हो सकता है बार बार मेहनत करने पर भी हमें कभी न कभी सफलता मिल जाए, लेकिन हो सकता है कि वो सफलता बहुत इतनी देरी से मिले कि उसका मिलना न मिलना दोनों बराबर हो चुका हो। वो लड़का जो बिना टेक्निक जाने, शायद उसे टेक्निक नहीं मालूम थी, और वो बॉल डालने की कोशिश कर रहा था, उसे सफलता नहीं मिल रही थी, लेकिन जैसे ही वो टेक्निक समझ गया उसे पहली बार में ही सफलता मिली। दूसरी तीसरी बार वो असफल हुआ, लेकिन चौथी बार वह फिर से सफल हो गया, और डेफिनेटली अब वह धीरे धीरे उसकी सफलता का प्रतिशत बढ़ता ही चला जाएगा, क्योंकि अब वो टेक्निक जान गया है। और ये जरूर है कि टेक्निक जानने के बाद वो टेक्निक उसकी हैबिट में शामिल हो जाए, उसकी आदत में शामिल हो जाए, उसके लिए उसे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, टाइम लगाना पड़ेगा, और जब वो टेक्निक उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाएगी, वो अनजाने में ही वैसा करने लगेगा, तब फिर वही बास्केटबॉल का बहुत अच्छा खिलाड़ी बन जाएगा। मित्रों, मैंने एक छोटी सी घटना आपको बताई है और उसका थोड़ा सा अपनी तरफ से विश्लेषण किया है। क्या आप सही मायने में इस घटना को अपनी सिविल सर्विस की तैयारी पर अप्लाई कर सकते हैं, या अपनी लाइफ में आप जो कुछ भी कर रहे हैं क्या आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं? मित्रों, हम लोगों के साथ सबसे बड़ा संकट यह होता है कि हम लोग बिना उसके विज्ञान को जाने ही उस काम को करने में जुट जाते हैं, लग जाते हैं, और नो डाउट कि हम बहुत हार्ड लेबर भी करते हैं। लेकिन जब हमें अपनी मेहनत के बराबर या उसके आसपास ही कह लीजिए कि जब कोई प्रतिदान नहीं मिलता है, रिजल्ट नहीं मिलता है, तो बट नेचुरल है कि वो डीमोटिवेशन का दौर शुरू हो जाता है। हम डीमोटिवेट होने शुरू हो जाते हैं, हम निराश हताश होने शुरू हो जाते हैं, और जैसे ही हमारे दिमाग में जरा सी भी निराशा का भाव आता है, आप निश्चित जान लीजिए कि अब असफलता की शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि निराशा के क्षणों में, हताशा के क्षणों में हमारी जो एनर्जी होती है वो कम होता है, कॉन्फिडेंस कम होता है, और एक समय में जबकि ज्यादा एनर्जी चाहिए और ज्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए, वही चीज हमारे पास कम है तो सफलता कैसे मिलेगी? तो मित्रों, मुझे कम से कम ये बात बहुत जरूरी लगती है कि आप कोई भी काम करें, चाहे वो छोटा सा ही काम क्यों ना हो, सवाल काम के बड़े और छोटे होने का नहीं है, सवाल केवल इस विश्वास को पालने का है कि हर काम को करने का अपना एक तरीका होता है, अपनी एक टेक्निक होती है, अपना एक विज्ञान होता है, और यदि हम उस टेक्निक को, उस तरीके को, उस विज्ञान को जान लेते हैं तो न केवल वो काम होता ही होता है बल्कि समय से पहले ही भी हो जाता है, और निश्चित रूप से तब हम दौड़ में जो भी काम कर रहे हैं, हम अकेले नहीं कर रहे हैं, उसमें बहुत से लोग लगे हुए हैं, और जब हम तरीके को जानकर उस काम में लगते हैं, उस दौड़ में दौड़ना शुरू करते हैं, तो डेफिनेटली रेस में हम आगे होते हैं। और जो रेस में आगे होते हैं मित्रों, जीतते वही हैं, मेडल उन्हें ही मिलता है। तो दोस्तों, यदि आप चाहें तो मेरे इस विश्लेषण को, इस छोटी सी घटना को आप अपने सिविल सर्विस की प्रिपरेशन के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। मित्रों, जो सिविल सर्विसेज है, नो डाउट कि इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, एक डिसिप्लिन अपनाना पड़ेगा, सिस्टमैटिक तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी, और उस तैयारी का जो बेस होगा, जो आधार होगा, जो फाउंडेशन होगी, वो होगी इसकी टेक्निक। आपको मालूम होना चाहिए कि इनफैक्ट जो सिविल सर्विस की तैयारी होती है, की जाती है, वो की कैसे जाती है? की जाती है, सबको मालूम है, खूब मेहनत करना पड़ता है, लोगों के दिमाग में ये भी है, गलत भी नहीं है, खूब पढ़ना पड़ता है, ये भी है, गलत भी नहीं है, लेकिन वो खूब का मतलब क्या, कितने का मतलब क्या, उसका भी कोई अनुपात होगा, कोई प्रतिशत होगा, कोई क्राइटेरिया होगा, कोई स्टाइल होगी, कोई तरीका होगा, और वो डेफिनेटली होता है। और सच पूछिए तो यह एकेडमी की जो ये 15 दिन की क्लासेज हैं, वो मैं बार बार हम लोग आप लोगों से कह भी रहे हैं कि ये सिविल सर्विस की तैयारी कैसे की जानी चाहिए, उसके तरीके को बताने की ही ये 15 दिन की क्लासेज हैं। आप सबके अंदर एक ऐसे बदलाव लाने की क्लासेज हैं जो न केवल आपको सिविल सर्विस के नजदीक ही पहुंचा सके बल्कि आपको जीवन में भी सफल बना सके। तो मित्रों, इसी के साथ ही मैं आज अपने इस फर्स्ट स्टेज की बात को समाप्त करता हूं, और अब मैं आता हूं कल के AIR न्यूज पर। और आज इस AIR न्यूज की चर्चा मैं उल्टे तरीके से कर रहा हूं, और मेरे इस उल्टे तरीके का संबंध कहीं न कहीं अभी बास्केटबॉल वाली घटना से भी है जिसकी चर्चा मैंने की है। मित्रों, आपने न्यूज सुनी ही होगी, मैं ये मानकर चलता हूं, आपको सुननी ही चाहिए, ये मैं बार बार आप लोगों को बताता रहता हूं, कहता रहता हूं, रिक्वेस्ट करता रहता हूं, सलाह देता रहता हूं। दो न्यूज AIR में आपने सुनी, मैं आज दो न्यूज की शुरुआत में चर्चा करने जा रहा हूं, और उसमें जो पहली खबर थी और जो बड़ी लंबी खबर भी थी, यदि यह न्यूज 14 मिनट की थी तो आप मान करके चलिए कि जो पहली खबर थी उसने करीब करीब 4 मिनट का वक्त लिया ही होगा, ऑलमोस्ट 30%। तो स्वाभाविक है कि अगर हम प्रायोरिटी के आधार पर देखें तो AIR ऑल इंडिया रेडियो से जो न्यूज आती है, हम ये मानेंगे कि जो पहली खबर होती है वो सबसे महत्वपूर्ण खबर होती है, जैसे कि अखबार में जो हेडलाइंस न्यूज होती है, जो फ्रंट पेज पर जो पहली खबर होती है उसे हम मानकर चलते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट खबर है, और वो होती भी है। लेकिन मित्रों, यहां आपके लिए पहली खबर, दूसरी खबर या राष्ट्र की दृष्टि से इंपॉर्टेंट और लेस इंपॉर्टेंट की बात नहीं है। यहां आपका जो चयन है उसका आधार है कि सिविल सर्विस के लिए कौन सी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर मैं पहली न्यूज की बात करूं तो स्वाभाविक रूप से आपको ये आपके दिमाग में आना चाहिए कि फर्स्ट न्यूज थी, लगभग 30% उसने पूरे न्यूज टाइम का कंज्यूम किया है, इस दृष्टि से ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। लेकिन मित्रों, ऐसा है नहीं, ये आपको समझनी चाहिए, क्योंकि सवाल केवल ये नहीं है कि आप इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट को जाने और ये भी जाने कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, सवाल ये भी है कि आप ये भी जाने कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। बिना रीजन के किसी को इंपॉर्टेंट मान लेना और किसी को इंपॉर्टेंट न मानकर रिजेक्ट कर देना, मैं समझता हूं ये वैज्ञानिक तरीका नहीं हुआ, ये लॉजिकल नहीं हुआ। आपको मालूम होना चाहिए कि ये न्यूज इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है। आप इस पर थोड़ा सा विचार कीजिए। जो स्टूडेंट थोड़े लंबे समय से इस ऑडियो को सुन रहे हैं, मैं समझता हूं कि उन्हें बहुत दिक्कत नहीं होगी इसका कारण ढूंढने में कि यह इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है। देखिए, बिहार का चुनाव अपने आप में इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी नहीं, जब चुनाव होंगे तब, और खासकर तब जब उसके रिजल्ट आएंगे, और तब खासकर रिजल्ट आने के बाद भी जब वो रिजल्ट हमारी पॉलिटिक्स में आए हुए किसी परिवर्तन को शो करेंगे तब वो इंपॉर्टेंट होंगे, अदरवाइज वो इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। डेफिनेटली जो स्टूडेंट बिहार के हैं उनके लिए ये चुनाव, खासकर अगर वो इंटरव्यू के आसपास हो रहे हैं तो महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगर इंटरव्यू के आसपास नहीं भी हो रहे हैं, और मान लीजिए कि आप अभी एग्जाम देते हैं, अभी आप प्री क्वालिफाई करेंगे, फिर मेंस क्वालिफाई करेंगे, और जाकर के आपके मई जून में आप इंटरव्यू देंगे मान लीजिए, और ये जो चुनाव हो रहे हैं बिहार के, ये सितंबर अक्टूबर में होते हैं, अगस्त में क्यों ना होते हों। लेकिन अगर वो किसी बहुत बड़े परिवर्तन को दिखाते हैं तो डेफिनेटली फिर बिहार के स्टूडेंट के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, दूसरे स्टेट के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा। वहां तक तो ठीक है, लेकिन अभी की जो खबर है वो इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि चुनाव की तैयारी के लिए जो राजनीतिक दल आपस में गठबंधन कर रहे हैं, या कह लीजिए जो चुनावी रणनीतियां बना रहे हैं, उसका सीधे सीधे कोई संबंध सिविल सर्विस में पूछे जाने वाले प्रश्नों से नहीं है। लेकिन आपको सुनना और जानना इसलिए है क्योंकि जो जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट नेशनल अफेयर्स हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, उनकी आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि यदि जानकारी नहीं हुई तब फिर आप आगे पीछे की चीजों को रिलेट करके और सही मायने में एनालिटिकल सिचुएशन तक पहुंचने की स्थिति में कभी आ ही नहीं सकते। और ये बात आपको खासकर सिविल सर्विस की तैयारी के लिए गांठ बांध लेनी चाहिए कि आपको सारी घटनाओं के बारे में जानकारी रखनी है, लेकिन कुछ घटनाओं के बारे में विशेष जानकारी रखनी है, बाकी चीजों को केवल सुनते रहिए। और ये काम तभी हो सकेगा जब आप AIR न्यूज को एटलीस्ट कभी भी सुनना बंद न करें, कभी भी मिस न करें। सुनना बंद की तो बात अलग है, मिस न करें। जैसे कल की ही एक न्यूज को लेता हूं मैं, स्टेटमेंट आया, खासकर अभी हमारे प्रधानमंत्री जी, आपको मालूम है कि बांग्लादेश की यात्रा पर गए थे, दो दिन की यात्रा के बाद लौट करके आए, बांग्लादेश के साथ बहुत संबंध अच्छे, मतलब बहुत से समझौते हुए हैं, और जिसमें खासकर भारत और बांग्लादेश की सीमाओं की जो जमीन के आदान प्रदान की बात थी वो बहुत बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, राइट। इसके बारे में हम लोगों ने कल बहुत विस्तार के साथ बातें की हैं। अब देखिए कि आज के न्यूज से वो सारी चीजें गायब हैं, कल की न्यूज में यही बांग्लादेश भारत का जो समझौता था ये इतना इंपॉर्टेंट था, कल उसने, इस न्यूज ने, बांग्लादेश वाली न्यूज ने परसों की न्यूज में 30% टाइम दिया, और मैं समझता हूं कि मैंने तो अपने पूरे के पूरे इसमें मैंने भी उसका करीब करीब 40% टाइम ले लिया केवल उसकी एनालिसिस करने में, क्योंकि मुझे लगा कि नहीं, सिविल सर्विस की दृष्टि से यह घटना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब आपने इसी न्यूज को कल सुना, बांग्लादेश की न्यूज को परसों सुना, तो उसने पूरी न्यूज का 30% टाइम ले लिया, 40% टाइम ले लिया। लेकिन जब आपने कल सुना तब आपको क्या लगा, केवल दो तीन स्टेटमेंट आए, और वह भी स्टेटमेंट जो था वो कांग्रेस पार्टी का है कि जो भारत के प्रधानमंत्री जब वहां गए थे तो उन्होंने खासकर, मैंने बताया था कि बांग्लादेश का जब निर्माण हुआ था उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, और पाकिस्तान और भारत के बीच इस मसले, मतलब ये दोनों के युद्ध का परिणाम है कि वो बांग्लादेश बना था। तो उन्होंने एक आरोप लगाया हमारे प्राइम मिनिस्टर पर, दो आरोप लगाए। पहला तो ये कि उन्होंने खासकर वहां इंदिरा जी का नाम नहीं लिया। दूसरा लगाए कि चूंकि पूर्वोत्तर भारत के खासकर जो मेघालय वाले जो दो तीन राज्य हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट में, उस उनकी जमीन बांग्लादेश को दी जानी है। अभी जो जमीनों का जो लेन देन होगा, जो कुछ जमीन बांग्लादेश हमको देगा, कुछ हम बांग्लादेश को देंगे, और इसके बारे में मैं कल के ऑडियो में बहुत डिटेल में आपसे बात कर चुका हूं। तो वहां के चीफ मिनिस्टर्स को ये अपने प्रतिनिधिमंडल में प्राइम मिनिस्टर लेकर नहीं गए। आपने अगर परसों की ही न्यूज को ध्यान से सुना हो तो असम के चीफ मिनिस्टर ने भी प्राइम मिनिस्टर पर यह आरोप लगाया था कि उन्होंने असम के चीफ मिनिस्टर को अपने इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल नहीं किया, जिसे उन्होंने गलत ठहराया था, क्योंकि असम का भी, असम के भी जमीन का मामला, हालांकि अभी समझौते में उसको नहीं लिया गया है, आपको अभी बाद में ये चीजें पढ़ने को मिलेंगी। अब मेरा प्रश्न यहां केवल एक है कि मैंने अभी बांग्लादेश के बारे में जो भी चर्चा की आप उन्हें दिमाग से हटा दें। आपने ये ऑडियो, कल का ऑडियो नहीं सुना होगा, और आपने परसों की एआईआर न्यूज नहीं सुनी होगी, एक कल्पना कर लीजिए। तो आप देखेंगे कि आज के ऑडियो में मैं जो कहने जा रहा हूं, जिसका बेस कल का न्यूज है, एआईआर न्यूज है, और कल के एआईआर न्यूज में बांग्लादेश को लेकर के जो खबरें आई आपके पल्ले ही नहीं पड़ेंगी कि क्या इसका मतलब हुआ, कि कांग्रेस क्या कह रही है कि इंदिरा जी का नाम नहीं लिया और पूर्वोत्तर भारत की उन्होंने उपेक्षा की, आपको पल्ले ही नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि आप न्यूज शुरू से सुनते आ रहे हैं तो फट से आपकी समझ में आ जाएगा कि हां, कहने का क्या मतलब है, और आपके दिमाग में क्लिक करेगा वो, और पूरी की पूरी तरह से घटनाक्रम आपके दिमाग में उभर आएंगी चीजें, और आप बिल्कुल एनालिटिकल सिचुएशन में पहुंच जाएंगे, और फिर आप यहां एनालिसिस भी कर सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो ये आरोप है, जो आलोचना है, ये कितना सही है, कितना गलत है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आपका दिमाग सोचना शुरू कर देगा। और यदि वो सोचना शुरू करके कोई निष्कर्ष निकाल लेता है इसके बारे में, तो आप समझ लीजिए कि आप में धीरे धीरे वो एनालिसिस पावर की सुगबुगाहट शुरू हो गई है, और एक बहुत शुभ लक्षण आप में उदित हो रहे हैं। तो मित्रों, इसलिए मैं ये बात बार बार आप लोगों से कहता हूं, और सच पूछे तो कहता भी रहूंगा, भले ही आप लोगों को ऊब क्यों ना होने लगे। जैसे कि यदि आप दिल्ली मेट्रो में जाएं तो बार बार आपको, चाहे आप डेली सफर करते हो, तो आपको याद दिलाता रहता है कि आप थोड़े से दरवाजे से हट करके खड़े रहिए और उस पर मत टिकिए और महिलाओं को सीट दीजिए, आपको बार बार याद दिलाता रहता है, और आप हो सकता है कि खींचते भी हो लेकिन वो याद दिलाता रहता है मेट्रो अपने ऑटोमेटिक सिस्टम से। तो कुछ उसी तरह का ऑटोमेटिक सिस्टम आप मेरा भी समझ लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना सिविल सर्विस की तैयारी मुझे बहुत कठिन लगती है, सच पूछे तो असंभव से भी लगती है। मित्रों, अब मैं आता हूं कि जो दो तीन इंपॉर्टेंट खबरें हैं उनके बारे में। इसके बाद न्यूज थी दोस्तों कि राष्ट्रीय जो न्यायिक नियुक्ति आयोग है, आप लोगों को मालूम है, अगर आप लोग सच पूछे तो ऑडियो गाइडेंस से जुड़े हुए होंगे, तो अब मैं जो चर्चा करने जा रहा हूं आपको बहुत नई चीजें नहीं लगेंगी, लेकिन मैं चर्चा इसलिए करने जा रहा हूं क्योंकि वो न्यूज का हिस्सा रही है और सिविल सर्विस के लिए इंपॉर्टेंट है। और तीसरी बात यह भी कि मैं इस बात पर बहुत यकीन करता हूं कि हमें चीजों को रिविजन करते रहना चाहिए, यदि हम चीजों को रिवाइज नहीं करेंगे तो कुछ दिनों के बाद वो हमारे दिमाग से गायब हो जाएंगी, हमारी होती हुई भी वो हमारी नहीं रहेंगी। तो देखिए, राष्ट्रीय जो न्यायिक नियुक्ति आयोग है, इसको लेकर के अभी सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर है। सुप्रीम कोर्ट की जो बड़ी बेंच है, वो जो बेंच है, संवैधानिक बेंच है, वो उसकी शुरू सुनवाई कर रही है, और उसने सरकार से कुछ मांगे थे कि आप अपने पक्ष में क्या कहना चाह रहे हैं। अब इसमें देखिए कि, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिविल सर्विस की दृष्टि से, अब आप देखिए कि इस न्यूज में सरकार ने क्या जवाब दिए हैं, इनको और ध्यान से सुनना, देखना होगा आपको। देखिए, दूसरे लोग सुन रहे हैं, ठीक है, सुन करके उनको आसानी के साथ सुन रहे हैं, भूल जा रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, उनको करने दीजिए, लेकिन आपके लिए तो ये किताब है, एक वॉइस या आवाज के रूप में सुनाई देने वाली आवाज है, जो आपको किताब की तरह पढ़नी है। सरकार ने क्या क्या पॉइंट्स दिए हैं आपको मालूम होने चाहिए, तभी तो आपको कंटेंट मिलेंगे। सरकार का क्या प्ली है, सरकार का देखिए प्ली है, और मैं केवल न्यूज के आधार पर कह रहा हूं, ये मैं अखबार से या आपके, चाहे अखबारों के एडिटोरियल कमेंट हो या अखबारों के आर्टिकल हो, मैं उसकी बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा। सरकार ने यहां चार पांच पॉइंट्स दिए हैं, पहला पॉइंट ये दिया है कि ये जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग है, ये कोई सरकार ने किसी आदेश के तहत नहीं बनाया, मैं अपनी ये लाइन मेरी है, बल्कि इसे संसद ने पारित किया है। संसद ने पारित करने का मतलब होता है मित्रों, लोकसभा ने भी पारित किया, राज्यसभा ने भी पारित किया और राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर भी किए। संसद ने पारित किया और साथ ही 20 राज्यों की विधानसभाओं ने भी पारित किया है, तब ये एक्ट बना, ये विधेयक पारित हुआ है और तब फिर ये राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई है। तो ये छोटी मोटी चीज नहीं है, इतना देश का ये इतना बड़ा समूह इसके पक्ष में है। इसीलिए बात देखा होगा, उन्होंने कहा कि ये जन भावना की अभिव्यक्ति है, ये शब्द दिया गया है कि ये राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग ये सरकार की अभिव्यक्ति नहीं है, ये जन भावना की अभिव्यक्ति है, ये किसी पार्टी का गेम नहीं है, राइट। तो अब आपको समझ में आओगे जनभावना की अभिव्यक्ति, जो न्यूज आइटम में जो शब्द दिया गया था न्यूज में, उसका क्या मतलब हुआ। फिर दूसरा उन्होंने क्या दिया कि लोग बदलाव चाहते हैं, सेकेंड पॉइंट उन्होंने दिया, लोग बदलाव चाहते हैं। ये पहले ही पॉइंट से जुड़ जाएगा कि अगर संसद और 20 विधानसभाएं इसको पारित कर रही हैं तो स्वाभाविक है कि जनभावना की अभिव्यक्ति है तो लोग ही चाहते हैं। तो वो फर्स्ट पॉइंट का ही एक तरह से एक सिंप्लीफिकेशन है, एक सरलीकरण है, कहने का एक तरीका है। लेकिन केवल लोग चाहते हैं या जन भावना की अभिव्यक्ति है, आप सिविल सर्विस में ये लिख के आते हैं, और दूसरी तरफ इसी पॉइंट को आप इस तरीके से लिखते हैं कि इसे संसद ने एवं 20 राज्यों की विधानसभाओं ने पारित किया है। तो आप खुद अब यहां थोड़ा सा रुक करके सोच लीजिए कि दोनों में से कौन सा आपका जो सेंटेंस है वो प्रभावशाली है, आप समझ जाएंगे। इसके बाद तीसरा, उन्होंने सरकार ने यह बात कही कि यह संविधान का जो मौलिक ढांचा है, एक जो ओरिजिनल फॉर्म है या जो संविधान की जो आत्मा है, उसके खिलाफ नहीं है। यह बात उन्होंने कही क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को केवल यही देखने का अधिकार होता है कि संसद ने जो कानून पारित किया है वो कहीं ऐसा तो नहीं कि संविधान की आत्मा के विरुद्ध हो। अदरवाइज संसद ऐसा नहीं कि सरकार द्वारा पारित सभी कानूनों को अवैध ठहरा देगा या सुनवाई करेगा, उसको पहले लगना चाहिए कि हाँ इसमें कुछ संविधान के मौलिक ढांचे से जुड़ी हुई बात है। तो गवर्नमेंट का कहना है कि नहीं, इसमें कोई मौलिक ढांचे को हम क्षति नहीं पहुंचा रहे हैं। और इसके बाद उन्होंने जो चौथा पॉइंट दिया था कि बहुमत के साथ ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, और आप देखेंगे कि ये जो चौथा पॉइंट है ये भी कहीं ना कहीं पहले ही पॉइंट को मजबूत बना रहा है। तो मित्रों, इस तरह से न्यूज को सुनने के बाद जब आप उनको अलग अलग पॉइंट से नोट करेंगे या नोट नहीं भी करेंगे तो उनके बारे में सोचेंगे, तब आपकी न्यूज पर पकड़ बनेगी। आप कल्पना नहीं कर सकते, आप इसको 3 महीने करके देखिए तो आपको पता लग जाएगा कि सच में कितनी बड़ी ताकत आप अंदर से महसूस करने लगे हैं। मित्रों, इसी तरह से देखिए दूसरी जो एक बड़ी छोटी सी खबर है, लेकिन इस छोटी सी खबर को आप अपनी सोच के द्वारा कितनी बड़ी बना सकते हैं, यहां मैं ये बता रहा हूं। मानसून के बारे में आपको मालूम है कि मानसून का जो आने का जिसकी जो प्रतिशत है वो काफी घटती जा रही, 93% से 88% पर हम आ गए हैं, और सरकार अपनी तैयारी कर रही है। तो प्राइम मिनिस्टर का इसके बाद इसके बारे में जो स्टेटमेंट है, जो उन्होंने मीटिंग ली है और जो बात की है, उसके देखिए न्यूज में क्या चीजें थी। पहले तो उन्होंने बात कही कि सिंचाई जो नीति बने, उस सिंचाई नीति में हमारे जो जो स्टूडेंट्स हैं खासकर इस क्षेत्र से जुड़े हुए, उनकी राय जरूर ली जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि सीधे ब्यूरोक्रेट्स बैठ करके इसके बारे में नीतियां बना दें। लेकिन उन्होंने जो बातें कही कि हमें और क्या क्या करना है, सिंचाई नीति में हमें क्या क्या ध्यान देना चाहिए, उसके लिए हालांकि उन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में और सरल बातें ही की हैं, बातें कोई बहुत कठिन नहीं है, लेकिन जब हम सरल बातों को सुनते हैं तो भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है मित्रों, जब आप उन पर सोचना शुरू करेंगे तो। जैसे उन्होंने क्या कहा कि सिंचाई के जो अन्य विकल्प हैं तलाशे जाने चाहिए, मतलब सिंचाई नीति में ऐसा नहीं कि कैसे सिंचाई के साधन उपलब्ध कराए जाए, हमारे पास विकल्प क्या हो सकते हैं। तो विकल्प में उन्होंने क्या कहा कि छोटे तालाब हो, हम छोटे छोटे तालाब बनाए, और छोटे तालाब के मामले में छत्तीसगढ़ राज्य ने बहुत अच्छा काम किया है, छोटे छोटे तालाब, और छत्तीसगढ़ की संस्कृति भी रही है, छत्तीसगढ़ के जो श्रोता हैं वो बहुत अच्छे से जानते होंगे, आप छत्तीसगढ़ के कहीं भी चले जाइए तो आपको जगह 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 तालाब आपको दिखाई देंगे, दूसरे क्षेत्रों में दूसरे राज्यों में इतने तालाब दिखाई नहीं देते, तो छोटे छोटे तालाब बनाए जाने चाहिए। इसके बाद उन्होंने कहा कि सिंचाई में जो प्रौद्योगिकी है और प्रशासन की व्यवस्था कैसे की जाए और कैसे इस्तेमाल किया जाए प्रौद्योगिकी का, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि कृषि पद्धति में भी बदलाव लाना चाहिए, सिंचाई का मतलब ये नहीं कि हम केवल अपने एरिगेशन के बारे में ही सोचे, क्योंकि जो एरिगेशन है वो एग्रीकल्चर का हिस्सा जरूर है, लेकिन एरिगेशन ही सब कुछ नहीं है। यदि हम सिंचाई के साथ साधनों में जो भी हम जुटा सकेंगे उनके साथ ही साथ अगर हम अपनी कृषि पद्धति में बदलाव लाएंगे तो हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। अगर बरसात नहीं भी हुई तो भी हमारे अनाज भंडार पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, अनाज उत्पादन हमारा काफी कुछ हो जाएगा और स्थितियां काफी बदल भी चुकी हैं। तो जैसे कृषि राजस्थान को ले लीजिए तो राजस्थान का बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो मानसून पर निर्भर है, लेकिन राजस्थान बहुत से ऐसे अनाज बो सकता है जिसको बहुत ज्यादा सिंचाई की जरूरत नहीं है। सिंचाई का सबसे ज्यादा जो असर पड़ता है वो बिहार पर पड़ता है, अदरवाइज दूसरे क्षेत्रों में काफी कुछ कहीं सिंचाई की सुविधा है, कहीं वो अनाज में बदलाव ला सकते हैं, कहीं कुछ कर सकते हैं, कहीं खरीफ की फसल खराब हुई तो रबी की फसल से उसकी भरपाई हो सकती है। इस तरह के ढेर सारे साधन हमारे पास हैं। इसके बाद उन्होंने ये कहा कि सिंचाई की जो नीति बने, सिंचाई के बारे में हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम जिला स्तर पर काम करें। यह डिसेंट्रलाइजेशन की बात है जो हमारी डेमोक्रेसी की आत्मा है कि हम डिसेंट्रलाइज करें, वो राज्य की राजधानी के स्तर पर नहीं हो, जिला स्तर पर काम हो, यानी कि जिला स्तर पर उसका इंप्लीमेंटेशन हो, जिला स्तर पर उसका सुपरविजन हो और जिले की जरूरत को देखते हुए उसके अनुकूल सिंचाई के साधन उपलब्ध कराए जाएं। तो इस तरह से आप देखिए कि किस तरह से सिंचाई जैसे छोटे से विषय को जो न्यूज में बहुत सामान्य से दिखाई दे रही है, जब आप पॉइंट्स में उसको डिवाइड कर लेते हैं और उस पर थोड़ा सा भी विचार करने लगते हैं तो कैसे वही सामान्य सी खबर आपके लिए एक इंपॉर्टेंट खबर बन जाती है। मित्रों, जहां तक न्यूज का सवाल है, इसके बाद दो छोटी छोटी खबरें हैं, लेकिन जो स्टूडेंट सिविल सर्विस के अतिरिक्त जो स्टेट सिविल सर्विस या दूसरे कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक इंपॉर्टेंट खबर हो सकती है कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो हैं उनका अपॉइंटमेंट कर दिया गया है। विजय शर्मा जो वहीं पहले कमिश्नर इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे उनको चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बना दिया गया है और चीफ विजिलेंस कमिश्नर मिस्टर के वी चौधरी जी को बनाया गया है। ये नाम आपको मालूम होने चाहिए और बड़ी बात यह है कि जो चीफ इंफॉर्मेशन जो कमिश्नर बनाए गए हैं वो वही पहले कमिश्नर थे, अब उनको चूंकि सबसे वरिष्ठतम थे, सीनियर मोस्ट थे, तो उन्हीं को अब चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बना दिया गया है। यहां सरकार ने वरिष्ठता के सिद्धांत का पालन किया है और मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ी बहुत अच्छी बात होती है कि सरकार जहां तक संभव हो सके, अगर बहुत मजबूरी न हो तो सीनियरिटी के सिद्धांत का पालन करे। ये एक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ाया भी जाता है और क्योंकि उसकी सेंटिटी ज्यादा होती है, उसमें कोई फिर पॉलिटिक्स शामिल नहीं हो पाती, कुछ और दूसरी बातें शामिल नहीं हो पाती। तो अगर किसी को मान लीजिए कि इलेक्शन कमीशन आपको इंफॉर्मेशन कमिश्नर ही बनाया तो योग्यता देख करके बनाया होगा, तो फिर जब वो इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन सकते हैं तो फिर वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर क्यों नहीं बन सकते यदि इस बीच में उनके ऊपर कोई दूसरे आरोप नहीं लगे हैं। तो मित्रों, आपको मालूम है कि 9 महीने से लगभग ये पद खाली पड़े हुए थे, इसको लेकर के सरकार की आलोचना भी होती थी, तो अब वो भरपाई उसकी हो चुकी है। मित्रों, बाकी खबरें उक्रेन की थी, अभी उसके ऊपर मैं चर्चा नहीं करना चाहूँ। G7 के देशों की बैठक को लेकर के वो एक इंपॉर्टेंट नहीं है। सेंसेक्स आप देख रहे हैं कि 5 दिनों से लगातार डाउन हो रहा है, इसके बारे में खासकर उस दिन मैंने काफी चर्चा आप लोगों से की थी जिस दिन की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने जो रेपो दर का जो आधार है उसको उसमें थोड़े से परिवर्तन किए थे, तो इसीलिए इसे मैं यहां दोहराना नहीं चाहूंगा। और सच पूछिए तो वक्त भी हो चुका है और इसी के साथ ही मैं अब आप लोगों से इजाजत भी चाहूंगा कि आप मुझे इजाजत दें। मित्रों, इस बीच आप लोगों को एक प्रश्न भी दिया गया होगा जो दिया गया है जो आपकी अपनी तैयारी के लिए है कि आप उस प्रश्न को अपने लेवल पर हल करने की कोशिश करें और मेरा विश्वास है कि प्रश्नों के उत्तर लिखने, प्रश्न हल करने नहीं बल्कि आप कह लीजिए उत्तर लिखने के लिए अभ्यास के लिए दिया गया है, तो मैं चाहूंगा कि आप उत्तर लिखने की कोशिश करें। मुझे मालूम है कि उत्तर लिखने में कितनी दिक्कत होती है लेकिन सिविल सर्वेंट बनना भी तो दोस्तों आसान नहीं होता है। तो अब इजाजत चाहूंगा, कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।